हरे कृष्णा। तो आप सब आज जिस इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं, ये अरोड़ा परिवार की ओर से शिव कुमार अरोड़ा, जिनका नाम सालंग रूप राम रूपदास है अभी दीक्षा का, और गीता अरोड़ा जो अब गोपी प्रिया देवी दासी है, अपनी सुपुत्री श्रुति उसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न करने जा रहे हैं। विवाह संस्कार भारतीय वैदिक संस्कृति में यज्ञ है, और यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं, यज्ञपति भगवान है। तो भगवान को आराधना करके, प्रार्थना करके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग आए हैं बुलाने के लिए। ये आजकल का शादी फंक्शन हो गया है, ये हमारा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का परिवर्तित रूप है। और इन्होंने अपनी कन्या का संबंध श्रीमान अनिल जी अरोड़ा के सुपुत्र अनुज अरोड़ा और इनकी संबंधन फिर मंजू अरोड़ा, तो ये दो परिवार जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए कन्या स्त्री बनने जा रही है। स्त्री का अर्थ होता है जो विस्तार करे, विस्तार करे, दो कुलों को जोड़े। विस्तार, विस्तार करना मतलब अब आगे परिवार बढ़ेगा। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में विवाह प्रोजेनी मतलब अपनी कुल परंपराओं को चलाने के लिए होता है। कुल परंपराएं जो हमारे धार्मिक सिद्धांत है वो पुष्ट ब पुष्ट चलते रहें, तो इसके लिए विवाह संस्कार संपन्न होता है। पहला विवाह इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी ने अपने ही आप से सीधे हाथ से पुरुष को उत्पन्न किया और उल्टे हाथ से एक स्त्री को उत्पन्न किया। जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ मनु, लेकिन उसका माता पिता नहीं था तो उसको स्वयंभू मनु कहते हैं। और जो पहली स्त्री इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुई उसका नाम है शतरूपा। सतरूपा स्त्री को सतरूपा होना चाहिए। सत्य का मतलब है सत्य, और सत्य का रूप स्त्री सत्य का रूप है, तभी मनु के द्वारा मानव इस सृष्टि में पैदा हुआ। उससे पहले सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। हमारा नाम मानव तब से पड़ा जब हम मनु की संतान हुए। तो ये पहला विवाह मनु जी और शत्रुपा का ब्रह्मा जी के आज्ञा और आशीर्वाद से हुआ। और फिर इन दोनों ने दो पुत्र उत्पन्न किए और तीन पुत्रियां। तब भी स्त्रियां ज्यादा उत्पन्न हुई थी, तीन लड़कियां थी इनकी, दो लड़के थे। और फिर पहली अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर कर्दम मुनि ऋषि के पास भगवान की प्रेरणा से गए। और इस विवाह का प्रबंध भगवान विष्णु ने किया। कर्दम मुनि को कहा आपके घर में अब स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर आएंगे और आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। और इस दूसरी इस धरती के ऊपर पुत्री जो विवाह हुई, विवाहित, उसकी नौ कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ। आपका पक्ष भारी है, नौ पुत्रियां एक पुत्र, एक पुत्र साधु हो गया कपिल देव, विवाह नहीं किया, वो साधु हो गया, विवाह ही नहीं किया। ये नौ पुत्रियों के द्वारा ऋषियों को से विवाह हुआ, उससे हम सब पैदा हुए हैं। तो हमारे गोत्र जो हैं वो इन ऋषियों के गोत्र हैं, हम इन ऋषियों की संतान हैं। तो हम इन ऋषियों की संतान है, उस परंपरा को चलाते हुए अपने को विवाह संस्कार को, प्रभुपाद जी जब पहली बार पाश्चात्य देश में गए तो उनको तो अब मुझे कहने में शर्म आता है, लेकिन लड़के और लड़कियां रोड के ऊपर ऐसे घूमते थे जैसे पशु घूम रहे। ऐसी स्थिति थी, संस्कारहीन सभ्यता थी। प्रभुपाद को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो उस संस्कृति से गए थे प्रभुपाद, जिस संस्कृति में शादीशुदा स्त्री अपने पति से दिन में मुंह छुपा के घर में रहती थी, ऐसी संस्कृति प्रभुपाद ने देखी थी। घूंघट दिन में हमने अपने जीवन में दिन में अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं देखा, उसका मुंह नहीं देख सकते थे। माता पिता के सामने वो मुंह घूंघट रखती थी, उसका पता है फायदा क्या होता था? कुछ सास ने कह दिया तो घूंघट के अंदर ऐसे कर दिया, झगड़ा तो नहीं होगा ना, कितना बड़ा उसका लाभ था। वैसे हमारे चेहरे के ऊपर तो सब कुछ दिख जाता है, घूंघट ने बहुत बड़ी शांति से काम चलाया। जब से ये घूंघट उठ गया तब से घर सारे टूट गए, सब बिखर गए घर। हरे कृष्णा। भागवत में ऐसे लिखा है प्रभुपाद ने। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने पहली बार पहले अपने एक लड़की शिष्य और एक लड़के शिष्य को कहा, आप लोग ऐसे साथ नहीं रह सकते हो, आपको मैं विवाह संस्कार से साथ रहने की शिक्षा देता हूं। पहली बार पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य देश में, अमेरिका के अंदर प्रभुपाद ने यज्ञ करके और विवाह किया। विवाह किया और तब से ये विवाह का जो आध्यात्मिक संस्कार है, जो आध्यात्मिक विवाह का रहस्य है, ये लोगों को समझ में आया। एक हमारा मित्र है प्रभुपाद जी का शिष्य दीन बंधु, वो बेटा ये आप एक तरफ खड़े हो जाओ, फोटो हमको किसी का नहीं चाहिए, ये कथा कोई सुनेगा तो काम का है, एक बार निकाल लेना हो बाद में देख लेना। दीन बंधु जी कहता है कि जिस तरीके से वैदिक संस्कृति का विवाह 7 दिन चलता है, एक बार करने के बाद दूसरे बार करने का कोई सोच भी नहीं चलता। इसका मतलब कोई तोड़ेगा ही नहीं विवाह, विवाह टूटेगा नहीं, तो तलाक हमारी संस्कृति में शब्द है ही नहीं। और ये विवाह हमारा जो होता है ये भगवान की उपस्थिति में यज्ञ के रूप में भगवान उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद जीवन देने के लिए देवता होते हैं और प्रेम से अपने सगे संबंधियों को और मित्रों को बुलाते हैं कि अब ये रिश्ता टूटने न पाए। मां अपनी बेटी को शिक्षा देती थी, बेटी तेरी डोली इस घर से उठती है अब आज, अब जिस घर में जा रही हो वहां से तेरी अर्थी उठेगी। ये मां बेटियों को शिक्षा दिया करती थी कि तुम्हारा घर अब वो है। ये संस्कृति हमारी की शिक्षा थी। ये संस्कृति बहुत विलक्षण संस्कृति है और मां जिस दिन बेटी घर में जन्म होता है उस दिन से ये सोचती है कि इस बेटी को मेरे को एक दिन विदा करना है, और उस दिन से उसके दिमाग में उस बच्ची के लिए हर अच्छी चीज, ये मेरी रानी है, कहना शुरू कर देती है मेरी रानी है, ये रानी बनेगी, इसके लिए ये चीज रखता हूं, ये चीज इसके लिए रखती हूं, बेटे को खिला पिला के खुश रखेगी। लेकिन बेटी उसके दिमाग में हर समय बसती रहती है। इतना अद्भुत कल्चर दुनिया में किसी विवाह करते हुए देखा नहीं है कि मां अथवा पिता अथवा परिवार जब अपनी कन्या को विदा करते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं और दिल बहुत खुश होता है। खुशी का ऐसा अद्भुत रोना कहीं देखने में नहीं आता है। ये क्यों ऐसा रोना अजीब लगता है? आज रोना तो आता है इसलिए कि बच्ची 18-20-22 साल अपने घर में पाली है, आंखों के पलकों की तरह इसको, अब ये हमको देखने के लिए कभी कभी मिलेगी, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने घर जा रही है। पुराने जमाने में कहते शेर के कंधे के ऊपर, शेर के कंधे के ऊपर, इसका मतलब अब ये अपने घर परिवार में जा रही है। ये बड़े से बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े से बड़ा दायित्व ग्रस्त का ये होता था कि ये कन्या को मैं विवाह संस्कार करके कब विदा करूंगा। और फिर सुन लीजिए, जिसको भगवान कन्या देता है वो महान है, क्योंकि उसको कन्या दान करने का फल मिलेगा। कन्या दान कहा जाता है इसको। पंडित जी कहता है कि अब आप संकल्प करके अपनी कन्या का दान करो, तो ये इतना बड़ा दान 20 साल पाल पोस कर किसी बच्ची को और ऐसे कन्या दान करके देना चाहिए जैसे पुराने जमाने में बड़े हमारे, आपको ऐसे कहा जाए सिखाने का, हमारा जो अपना एक अंग है सिख खालसा जो हमारा, उसमें हर हिंदू ने अपने दूसरे बेटे को ऐसे संकल्प करके गुरु गोविंद सिंह महाराज को दिया था, जैसे एक माँ बाप अपनी लड़की को देते हैं पति को, ऐसे संकल्प करके गुरु को दिया था अपना दूसरा बेटा, जिससे ये सब खालसा आज हमारी सेना है, ये सनातन धर्म की सेना है। रक्षा के लिए अपना अपना बेटा लोगों ने ऐसे संकल्प करके दिया था कि गुरु जी आपके चरणों में ये अर्पण करते हैं। ऐसे कन्या दान करने का अधिकार कितना बड़ा भाग्य से मिलता है, तो लड़की के जन्म के ऊपर। और हम आपको एक बात बता दें कि जितने भी साधु संत इस धरती के ऊपर पैदा हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा पैदा हुए हैं, जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, किसी मां ने उसको जन्म दिया है और दूध पिलाया है। तो इसलिए मात्र देवो भव वेद ने पहले लिखा है, मात्र देवो भव, माता तेरे लिए पूजनीय है, ये वेद का पहला, पीछे है पितृ देवो भव, फिर है आचार्य देवो भव, लेकिन पहले तेरे लिए तेरी माता पूजनीय है। कि इस दुनिया को जो कुछ भी बहुमूल्य रत्न मिले हैं वो मां की गोद में किसी के पले है ना। जब तक संस्कार नहीं होगा समाज में तो हमारे आने वाली पीढ़ी कभी भी उसका भविष्य उज्जवल नहीं दिखा जाएगा। भगवत गीता में भगवान को कहना पड़, अर्जुन ने कहा ये बात, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय स्त्रीशु दुष्टाशु जायंती वर्ण शंकर। अगर कुल परंपराएं नहीं रही, धर्म की मर्यादाएं नहीं रही, तो स्त्रियों के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण जो बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे संसार के लिए आतंकवादी के रूप में सबका दुख का कारण बनेंगे, किसी को सुख नहीं देंगे। ये बहुत बड़े दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, उसका एक ही कारण है कि ये हमारा जो ग्रस्त आश्रम जिसको कहते थे, ये आश्रम बिगड़ के एक भोग और विलास का नमूना दुनिया ने बना दिया। भारतीय संस्कृति में हमने आपको कहा, विवाह कुल परंपराओं की रक्षा के लिए होता है। पुत्र चाहिए ताकि पीछे पूर्वजों को पिंडदान करेगा, ऋषि रण को उतारेगा, पितृ रण को उतारेगा, ये ऋण है ये हम। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का विवाह भोग प्रदान है, इंजॉयमेंट के लिए है। इंजॉयमेंट नहीं हुई तो विवाह टूट जाएगा। प्रभुपाद जी को कहना पड़ा एक बार कि भारत के गरीब भिखारी की पत्नी अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी से महान है। बोला, ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोला, एक गरीब भिखारी को मैंने देखा, धुले हुए कपड़े पहन के भीख मांग रहा है। तो मैंने उससे देखा, तो थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आई, उसको कपड़े भी पहनाए, कुछ खिलाया भी। तो पत्नी से पूछा, बोला, मेरा पति है, मेरे भाग में यही मिला है, अब इसकी सेवा मेरा धर्म है, रोज मैं इसके कपड़े धो के आती हूँ, इसको हाथ से भोजन खिला के जाती हूँ। मैंने उसको नमस्कार किया कि अच्छा है, धर्म अपना। और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी जब अमेरिका का वो प्रेसिडेंट था उसके साथ आई थी, तो गार्ड ऑफ ऑनर का उसको उसके साथ बड़ा सम्मान हुआ था। और दूसरी बार जब पति को छोड़ के वापस आई तो कोई उसको राम राम करने वाला भी नहीं था। तो उससे तो बड़ी हुई ना, कहो तो छोड़ दिया, तो फिर प्रेसिडेंट की पत्नी तो नहीं रही, तो कौन पूछेगा उसको। एक सूर्य वंश के राजाओं में कथा आती है, महाराज शरियाती अपनी बेटी को लेकर आश्रम में गए थे चवन ऋषि के। बच्ची को पता नहीं लगा, कहीं खेल रही थी, तो तिनका किसी को मारा तो अंदर से खून निकला। तो ऋषि बड़ा क्रोधित हो गया कि ये ऐसे किसने किया है। तो सबको, राजा की सेना को तकलीफ होने लगा, तो राजा ने लड़की से पूछा, कुछ हुआ क्या? बोला, मुझे मालूम नहीं पिताजी, मैं ऐसे घास का तिनका मार रही थी तो किसी को चोट लग गई। ओ, राजा समझ गया कि मेरी बच्ची ने किसी का यहाँ हिंसा किया है, हो सकता है ऋषि किसी रूप में हो। ऋषि को कहा कि महाराज, हमारी कन्या से कुछ अनजाने में अपराध हो गया है। तो उस वक्त ऋषि ने कन्या की ओर देखा, और ऋषि की उस वक्त उम्र थी 80 साल से ऊपर, आंखें भी बंद हो रही थी, गाल अंदर थे। और राजा बड़े बुद्धिमान होते हैं, राजा ने जैसे ऋषि को कन्या की ओर देखा तो समझ गया कि ऋषि की इच्छा कन्या से विवाह करने की, और अगर ये इसकी इच्छा है तो मैं इनके शराब से मुक्त होने के लिए इसको विवाह करके देता हूं। और ऋषि ने पूछा, इस कन्या का विवाह हुआ है? राजा ने बोला, नहीं। और उसने उधर उस बच्ची का पाणी ग्रहण संस्कार करके दे दिया उस ऋषि को और चला गया। अब ऋषि तो बड़ा शक्तिशाली था, उसने अश्विनी कुमारों को बुलाकर देवताओं के वेदों को बोला, तुम दोनों वेद देवता के वेदों, तुमको देवता तो नहीं मानते हैं, वैसे डॉक्टर और वेद को शूदर ही मानते हैं, क्योंकि काम क्या करता है, जैसे गैरेज में मोटर बनाता है मैकेनिक, ऐसे वो हमारी मोटर को ठीक करता है, क्योंकि इस शरीर को मोटर ही कहा गया है, ये मोटर ही तो है। बस एक मैकेनिक ने कहा कि मैं इंजन बांधता हूं तो 10,000 रुपये मिलते हैं, और डॉक्टर दिल के अंदर वो दिल का इंजन जो मोटर है वो बनाता है, उसको 1,00,000 मिलते हैं। अंतर क्या है? बोला तुम खड़े हुए इंजन को बना मोटर को बनाते हो, वो चलती हुई मोटर में हाथ डालता है, बस अंतर इतना ही। तुम बंद इंजन को बनाते हो और वो चलती हुई दिल को बनाता है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन है दोनों काम ऐसे। तो डॉक्टरों का उसको कहा तुमको मैं देवताओं का स्तर दिला दूंगा, तुम मेरे को जवानी दे दो। दोनों का हम तो वैद्य हैं, आपको ऐसे करेंगे। बोला इस कुंड में स्नान करो। सब तीनों गए इस कुंड में स्नान करके, बाहर निकला तो चमन ऋषि तो बड़ा नौजवान बन के निकला 16 साल का, और वो दोनों भी सुंदर वैसे ही निकले। लड़की ने हाथ जोड़ के कहा मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है, मेरा पति कौन है, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। तब दोनों ने आशीर्वाद दिया कि ये आपका पति है। अब ये पति नौजवान हो गया और शरियाती इस ऋषि अपने जामाता को बुलाने के लिए आया है कि कोई यज्ञ कराना है। उधर आके देखा तो अपनी लड़की को नौजवान के साथ देखा, बोला बेटी तुम पति अपने को छोड़ के आ गई, किसके साथ? ऐसे तो हमारे कभी कुल में हुआ नहीं। बोला पिताजी ये आपका जामाता है, अश्वनी कुमार की कृपा से इनको ये नया शरीर मिला है। हाँ चवन ऋषि नया बन गया, तब से लोगों ने चवन प्राश खाना शुरू किया, ये बूढ़े जवान हो जाएंगे। ये चवन ऋषि उसका नाम था जो ऐसे जवान हो गया था, तब से अब चवन पर का मार्केट चल गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां तो हमने आपको ये बताया कि वो बच्ची उस बूढ़े की भी सेवा को छोड़ने को तैयार नहीं थी कि पिता ने मेरे को यहां अगर दिया है तो मेरा जो भाग्य है। लेकिन उसका भाग्य कैसा था कि उसको नौजवान बन के मिल गया, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब एक आपको हंसने का उदाहरण देता हूं दूसरा। पाश्चात्य देश में एक कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर एक पत्नी ऐसे पंखा कर रही है, और भारत से गया हुआ एक महात्मा प्रणाम करके कहता है देवी तुम्हारे धर्म को पति के धर्म को मैं देख के प्रणाम करता हूं। हमने भी भारत में पतिव्रताएं देखी है, लेकिन मरने के बाद कब्र के ऊपर कोई पंखा जलाए ऐसा कभी। बोला ऐसे मत कहो महाराज। बोला नहीं नहीं मैं जानता हूं हमारे वहां छोटी उम्र में भी कोई विधवा हो जाती है तो सारी जीवन अपना बिता देती है, लेकिन सती हो जाती है करती थी, लेकिन ऐसे पंखा झेलता हूं। बोला ये बात नहीं है भाई। क्या बात क्या है फिर कैसे क्यों कर रही हूं? बोला हमारे यहां एक रवाज है जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता। तो मैं जरा इसको जल्दी सुखाने का प्रयास। अरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब उस संस्कृति में क्या समस्या होती है। अब हंसने का शादी में वैसे कहते हैं हंसना गाना ऐसे करना चाहिए। तो भगवान के एक पत्नी ने अपने पति को कहा था, उसी संस्कृति की बात कर रहा हूं, कि मेरे चप्पल लेके आना। तो बेचारा शाम को थका हुआ आता था, टाइम से भूल जाता था, ला नहीं पाया। एक दिन भागता हुआ चप्पल वाले दुकान पे गया शाम को, बोला लेडीज चप्पल चाहिए। उसने बोला ठीक है नाप क्या है? बोला पता नहीं है, देखो पीछे निशान होगा नाप करके देख लो। नाप पीछे पड़ी है। ये संस्कार बहुत बिगड़े हुए कहां से आ गए हमारे अंदर, क्योंकि विवाह के अंदर मर्यादाएं खत्म हो गई। पंडित जी को बुला के कहते हैं पंडित जी आप ऐसे करो 15 मिनट वाली शादी कर लो, आपको 500 के बजाय 1100 रुपये देंगे। पंडित जी बोला नहीं 4 घंटे की विवाह। बोला पंडित जी 4 घंटे वाली वेदी नहीं चाहिए। अरे बोले मंत्र वेद के पढ़ने आपको बताना? बोला हमको सब पता है, बस पंडित जी आप सुहा करो दक्षिणा लो और जाओ। तो ये जो इसके पीछे इसके पीछे रहस्य क्या है, उन लोग ऐसे क्यों करना चाहते हैं, धर्म को, धर्म का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि ये विवाह एक पवित्र संस्कार है, एक संबंध है, जिस संबंध को संपन्न करने के लिए कुछ वेदों ने मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं को पालन करते ये कार्य संपन्न करना चाहिए। और कन्या के पिता का सम्मान बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो दान देने वाला है, लड़के का पिता दान लेने वाला है, ऐसा महाराज दशरथ ने कहा था सीता मां के पिता जनक जी को कि आप देने वाले हैं, आपका हाथ ऊपर है, हम लेने वाले हैं, हमारा हाथ नीचे है, इसलिए जैसे आप कहेंगे, जब आप आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो पहले इतनी बड़ी एक रामायण के अंदर एक स्थान पे भरत जी प्रार्थना करते हैं गंगा जमुना और त्रिवेणी संगम के ऊपर, कहते हैं कि मैं आज मेरे धर्म को छोड़ रहा हूं, क्षत्रिय का धर्म कभी मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय केवल देता है, वो चैरिटेबल होना चाहिए, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं, और फिर उससे ज्यादा भी मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूं कि मैं मांग किससे रहा हूं, गंगा से, जो भागीरथ ने नीचे लाया, भागीरथ हमारे पूर्वज है, वो तो हमारी पुत्री हुई, मांग रहा हूं जमुना आपसे, जो तो सूर्य की पुत्री है, जिसके वंश में हम उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी तो हमारी बेटी है, और ये सरस्वती वशिष्ठ की बेटी है जो हमारे गुरु हैं, तो तीनों हमारी पुत्रियां हैं, पुत्रियों से कभी लिया नहीं जाता है, पुत्रियों को हमेशा दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रार्थना करके मांग रहा हूं, और मांग क्या रहा हूं कि मुझे न संसार में धन चाहिए, न काम चाहिए, न भोग चाहिए, मुझे तो राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही मेरे को दे दो, आप तीनों मेरे ऊपर ये कृपा करो, न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं पदी निर्वाण, राम पद रति, बस यही एक मैं आपसे। एग्जैक्टली ये श्लोक ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये है ये अनुज है, अनुज जरा को एक लाओ उधर से माला पहना दो, आशीर्वाद यहां से भगवान के चरणों से ले आओ, एक और ऊपर से लाइए, हरे कृष्णा। लाओ, ओके बेटा, हरे कृष्णा। तो आज इतने सारे लोग सब आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए कि आप भार उठाने जा रहे हो जिंदगी में, अब ग्रस्त एक भार है, और हाँ इसको भार कहते हैं, एक से दो हो गया, बढ़ गया ना परिवार, तो बहुत से लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता है, और भगवान को प्रार्थना इसलिए करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। ये सब लोग हम इनसे यही विनती कर रहे हैं, कहां गई श्रुति, श्रुति हरे कृष्णा, श्रुति वेद को कहते हैं, और अनुज वैसे बालक को कहते हैं, कौन बच्ची है, कौन बच्ची, छोटी बच्ची, इतना हरे कृष्णा। ये श्रुति को ऐसी माला पहनाओ कि बस अब सेवा में रहेगी, इसी में सुखी रहेगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब 24 तारीख को आप एक दूसरे को माला पहनाना, 24 को है ना, हाँ मैं राइट हूं ना, अब भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिल गया, आप बैठिए आरा बिराजी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम धन्यवाद करते हैं दोनों अरोड़ा परिवारों का जिन्होंने विवाह को वैदिक विधि से करने के लिए सत्संग पहले आयोजित किया, और सत्संग संस्कार सिखाने के लिए होता है, जीवन में पवित्रता लाने के लिए ना होता है, और पवित्रता करने का एक ही साधन है भगवान का नाम। भगवान का नाम सजे सारे वातावरण को और हृदय को भी पवित्र कर देता है। और हमारी विनती है कि प्रायः जितना हो सके, आपको अभी मालूम नहीं है, हमको ये मालूम है कि विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन, आज की भाषा में वैसे कन्या और वर, हमारे जो आंखों से देखे हुए समाज है उसकी बात यह है, पहले जैसे उतरते थे वेदी से, तो हमारे गांव में जितने मंदिर होते थे, पहले दोनों पल्ला बंधा हुआ हर मंदिर में जाते थे, पुजारी चरणामृत देता था, आशीर्वाद देता था, और ये वहां माथा टेक के, और सारे ही जो गांव के देवाले होते थे उनसे आशीर्वाद लेते थे, और फिर जब घर में जाता था जाते थे तो वर अपने सारे बुजुर्गों के समाज जो बैठे थे समाज में उनको जाके चरण छू के आशीर्वाद लेता था, और कन्या वैसे अपनी सासों आदि जो थी उन सब को प्रणाम करती थी। और जब शादी करके लड़का वर आता था और अभी पल्ला बंधा हुआ अपने घर में, तो दरवाजे में बहन आने नहीं देती थी, जो बहन पूछती थी कहां गए थे, क्या लाए हो, तब भाई को बोलना पड़ता था मैं लक्ष्मी लाया हूं। अब मैं लक्ष्मी लाया हूं, और उसको जब अंदर लाते थे उस वक्त सास घर में बहुत सुंदर एक थाल चांदी के में लाल कुंकम पानी में घोल के रखती थी, और अपनी बहू के चरण उसमें पड़ते थे, और घर के अंदर वो लाल चरण जाते थे कि ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है। आज एक सुबह बहुत अच्छी बात कर रहे थे महाराज कि पहले छोटी उम्र में विवाह कर देते थे, उसका फायदा क्या था मैं सिर्फ वो बताता हूं। एक फायदा ये होता था कि लड़के लड़की को ये पता नहीं है कि विवाह कोई भोग के लिए होता है, वो समझते कि बस ये तो खेल खेल में हमारा शादी हो गया। और फिर वो छोटी बच्ची जब सास के पास रहती थी उसके लिए तो वो मां ही होती थी, और ऐसा कोई पति को और कान भरने के लिए कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि साथ रहना ही नहीं था, तो वो बच्ची का ऐसा रिश्ता उस सास के साथ होता जैसे मां बेटी का हो जाए। तो वो जब 10-5 साल उस माहौल में रहती थी उसके पास घर के अंदर, जब जवान हो जाते थे अपने गृहस्थ आश्रम में भी जाते थे तो वो एक ऐसे संबंध स्थापित हो जाते थे टूटने वाले नहीं होते थे। 10-10 परिवार साथ हमने रहते देखे हैं। एक घर में हम गए थे, घर में फोटो देखा, हमने पूछा ये तो आपका कॉलेज का, बोला कॉलेज का नहीं, हम 7 भाई हैं, और ये 49 हमारे पूरे परिवार का फोटो है। और हमने आश्चर्य से पूछा कि 7 कैसे रहते हो, बोला अभी भी हमारे घर में भोजन एक ही जगह बनता है, ये हमारी माँ अभी तक जीवित है। हमने बोला ऐसे संभव तो नहीं है, बोला संभव है, बोला कैसे, मैंने मेरे को बोला ये हमारे घर में देखिए भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हमारे घर में जो बनता है भगवान को भोग लगता है, सारा परिवार साथ बैठ के खाता है, और हर एक भाई का अपना अपना सेवा है, जैसे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सबके बच्चों के एडमिशनों को देखता है, एक का हेल्थ का डिपार्टमेंट है, सबको कोई बीमार होता है तो इसका डिपार्टमेंट है, और एक का लीगल डिपार्टमेंट है, कोई परेशानी है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो जैसे गवर्नमेंट चल सकती है इतनी बड़ी, तो क्या घर नहीं चल सकता है क्या हमारा, कि सब एक एक काम को संभालते हैं, तो हर एक को एक दूसरे की जरूरत है और साथ रहते हैं। अब हमारे को एक परिवार को 3 महीना छुट्टी पे जाना पड़े तो परिवार नहीं है, किसी अपने आप काम चलता रहेगा। आजकल के न्यूक्लियर और प्रोटॉन फैमिली में एक दिन भी दुकान बंद करने में परेशानी होती, कहीं जा नहीं सकते। तो ये संस्कार उस विवाह में, और प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कि छोटी मंगनी भी करने से मेंटल करप्शन नहीं होती। बच्ची को मानूंगा मेरा यही विवाह होना है इससे, और लड़के को मालूम है ये इससे मेरा विवाह होना है, इसलिए उसके दिमाग में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मेंटल करप्शन जो है ये भी बहुत बड़ा बाल है, बहुत बड़ी परेशानी है आजकल के समाज के अंदर। जो भी हो, हमारी विनती ये है कि विवाह के बाद मंदिर में जाके ठाकुर जी से पहले आशीर्वाद ले लेना चाहिए, अथवा जैसे मंदिर ही बनाते थे बेडी, अभी हम तो कभी कभी कहीं नहीं जा सकते, बहुत दूर है तो उधर ही एक मंदिर भगवान का, उसके सामने ही विवाह करो, उसको प्रणाम करके अपना जीवन, और आप लोग भी घर में ऐसी संस्कृति को बना के रखने का प्रयास करोगे तो आने वाली पीढ़ी में हम संस्कार देके जाएंगे बच्चों को, हम नहीं रहेंगे तो ये संसार में लोग सुखी रहेंगे, और हमने अभी चिंता नहीं की तो आगे चल के ऐसा वातावरण होने वाला है जो देखा हम देख भी नहीं सकते, देखना भी दुखी हो जाएंगे हम। तो ये बहुत बड़ा एक कैसे भी कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था के अंदर प्रभुपाद ने विवाह के द्वारा कांग्रीगेशन में ग्रस्तों के विवाह में भी साधु संत इतने ये ब्रह्मचारी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और ये महाराज भी पधारे हैं, और प्रभुपाद ने तो भगवद गीता में लिख ही दिया कि सन्यासी होते हुए भी यज्ञ करना छोड़ नहीं सकता है, और विवाह एक यज्ञ है, इसलिए सन्यासी को जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आप सबको हमारी विनती है कि अब इन दो बालकों को, जो कन्या और वर को, वो हमारी श्रुति और अनुज जी जो आगे जाके एक आश्रम में प्रवेश करेंगे ग्रस्त, इनके मंगल के लिए, इनका जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, आनंदमय हो, अपने दोनों परिवारों को साथ ले चलें, इसलिए आप सब बड़े प्रेम और भाव से भगवान को प्रार्थना कीजिए, हमारे साथ भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा राधिका रमण की, श्री कृष्ण बलराम की, चिंताय गौर सुंदर की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। तो आप सबकी भी जय, ऐसी प्रार्थना आप इनके लिए कीजिए, और आगे भी विवाह में सब जब भी जाएं तो ये भाव ले जाएं कि हम एक धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, इसको एक फंक्शन के बजाय इसको धार्मिक एक हमारा उत्सव मान लीजिए। जैसे जन्माष्टमी में जाते हैं, अभी भी ऐसे है कि सीताराम का विवाह बहुत बड़ा करते हैं लोग, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह करते हैं, असल में अगर आप वेद के मंत्र पढ़ोगे, पूछोगे पंडित से ना, तो लक्ष्मी नारायण के विवाह वाले मंत्र पढ़े जाते हैं, और शादी के बाद पंडित जी अभी नहीं हो रहा है, पहले एक तरफ लड़के वालों को खड़ा करता था, लड़का उनके तरफ खड़ा होता, एक तरफ लड़की वालों को खड़ा करते थे, और बीच में पहले कहता था जैसे हमारी पहले रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ, सीताराम का विवाह हुआ, ऐसे पहले जैसे पार्वती शंकर का विवाह हुआ, ऐसे इस परंपराओं के अंदर आज इस कुल में इसका पोता और इसका नाना ये, इस नाने का नाम, नाने का गोत्र ये, दादा का गोत्र ये, इनका पिता ये, और इस बेटी का गोत्र ये, इनके नाने का ये, दादा का ये, आज ये बेटी के माता पिता अपनी पाल पोष कर लड़की को अपने संबंधियों के झोली में उनके बेटे को अर्पण करते हैं, ऐसे कह के फिर विदा हुआ करते थे। अब ये समाज में बातें रही नहीं, लेकिन ये पूरे समाज में अनाउंसमेंट पंडित जी पढ़ता था, उसको पर्वत पढ़ना बोलते थे, ये सब चला गया। और जिस दिन लड़की का विवाह होता है उस दिन माता और पिता उपवास रखते हैं, केवल माता पिता नहीं, जितने रिश्तेदार हमारे गांव में होते थे वो भी उपवास रखते थे कि भाई घर में बच्ची का विवाह है तो ये उपवास, जैसे एकादशी रखते हैं ऐसे रखते हैं, केवल थोड़ा फलाहार होता था। दूसरे दिन शादी के मतलब वेदी से उतरने के बाद घी पिघले हुए के अंदर बच्ची का मुंह घी में देखते थे, उसके बाद जाके भोजन करते थे। ये लड़कियों का बहुत सम्मान किए, संस्कार थे, अब तो घी नहीं मिलेगा तो ये सब हमने देखा, उसके अंदर बच्ची का मुंह देखते थे। इसका भाव ये होता था कि अब हमारे लिए तेरा मुंह देखना इतना ही मुश्किल है जितना हम आपको घी में देखते हैं, अब सीधा हम आपको नहीं देख सकते हैं, आप अब हमने आज आपको विदा किया यहां से। ये बहुत बड़े संस्कार इसमें थे। जो कुछ भी हो, हमारी आपसे विनती है, कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था की ओर से जो भी संस्कार वैदिक संस्कृति के विवाह का था वो हमने आपको बताने का सेवा किया, और धन्यवाद करते हैं फिर भी अरोड़ा परिवार को, शिव कुमार सालंगराम रूप जी और गीता गोपी प्रिया को और मंजू और अनिल अनिल जी ना, अनुज लड़के का नाम है, अनिल पिताजी का नाम है। तो दोनों परिवारों को भगवान प्रेम से साथ रखे और बच्चे अपना जीवन नया सुख से आरंभ करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसका कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
धन्यवाद। अब थोड़ा भक्त लोग कीर्तन करेंगे, महाराज कुछ आशीर्वाद के वचन कहेंगे, हम आपसे आज्ञा लेंगे।